ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 और आज श्लोक संख्या है 24। अग्निर् ज्योतिर शुक्ला शनमासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्निर्ज्योतिर शुक्ल शनमासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्निर्ज्योतिर शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। इसका अनुवाद इस तरह से है, जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ लक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जब अग्नि प्रकाश दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों को इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। तात्पर्य खत्म। हरे कृष्णा। तो एक बार और श्लोक का अनुवाद पढ़ देते हैं। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव से प्रकाश में दिन के शुभ लक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो योगी हैं वो शरीर को त्यागते हैं उसके लिए उनके पास कंट्रोल होता है, उनका शरीर को त्यागने के समय को चुन सकते हैं और ये समय बताया है। इस समय को अगर वो चुनते हैं तो जो ये सब के अधिष्ठाता देवता हैं वो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो फिर पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी आखिर में कह रहे हैं कि जो भक्त है उसके लिए कोई किसी तरह के समय की या किसी पक्ष की किसी तरह की जरूरत नहीं है। आखिर में प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि किंतु कृष्ण भावना अमृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक, किसी भी तरह से वो शरीर को त्यागे किसी जगह पे किसी क्षण में, वो भगवान के धाम ही जाता है। तो ये बात हमें समझना है कि जो मृत्यु है वो अवश्यम भावी है और इस सारे अध्याय में मृत्यु के ऊपर ही चर्चा की गई है। हालांकि हमारे समाज में मृत्यु के ऊपर चर्चा नहीं होती है ना, मृत्यु की बात करते हैं तो चुप कर जानी है ना, मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं करते ज्यादा। लेकिन यहां भगवद गीता में पूरा अध्याय है एक मृत्यु के बारे में बताया है, कितने सारे श्लोक हैं मृत्यु के, और सिर्फ भगवद गीता में नहीं भागवतम में भी बताया है। क्योंकि अज्ञानता के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण लोग ऐसा समझते हैं कि मृत्यु जो है वो एक ही बार आती है, लेकिन मृत्यु तो एक्चुअली जब हम कहते हैं ना कि उसका जन्म हुआ है तो एक्चुअली सच बात यह है कि मृत्यु का ही जन्म हुआ है। मृत्यु तो चल ही रही है, शरीर हमारा बदल रहा है, इसीलिए भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। ये बात है जो समझने की है कि हम शरीर बदल रहे हैं, हम लोग शरीर लगातार बदल रहे हैं, और इसी तरह से एक शरीर को छोड़ के हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। धीरस तत्र न मुह्यते, धीर लोग जो हैं इससे परेशान नहीं होते। तो हम सब लोग परेशान हो जाते हैं किस लिए, और हमें डर लगता है अपनी मृत्यु से, दूसरों की मृत्यु से हमें डर लगता है। इसीलिए डर लगता है क्यों, क्योंकि हम लोग असल में मृत्यु क्या है उसको हम नहीं समझने का प्रयास करते, उसके लिए अभ्यास नहीं करते। क्योंकि जैसे जब बच्चा का शरीर है, वो बच्चे का शरीर जब जवान हो जाता है तो कोई इसमें शोक थोड़ा मनाता है कि वो बच्चा कहाँ गया, कोई शोक नहीं मनाता बच्चा कहाँ गया। तो भगवान कह रहे हैं कि इसी तरह से आखिर में जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं मानसांसी जी नानी यथा विहाय नवानी गरनाती नरो पुरानी है। तो जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर आप नए कपड़े धारण कर लेते हो, इसी तरह से शरीर जब पुराना हो जाता है, जो आत्मा का कपड़ा है उसको छोड़ के आत्मा जो है नया कपड़ा नया शरीर धारण कर लेती है। इसमें क्या जो है विचलित होने की बात है, क्यों परेशान होने की बात है, क्यों हम लोग दुखी हो जाते हैं और क्यों इतना इसके पीछे प्रॉब्लम है। बताया जाता है कि जब हम शरीर त्यागते हैं तो इतना कष्ट होता है, गरुड़ पुराण में बताया ये कि जैसे 40,000 बिच्छू जो हैं वो एकदम काटे, 40,000 बिच्छू एकदम अगर किसी को काटे, बताओ एक बिच्छू का इतना कष्ट होता है। मुझे पता नहीं किसी को अनुभव है कि नहीं, गांव में तो आम लोग वो अनुभव होता है बिच्छू के काटने का, है ना माता जी कह रहे हैं, है ना, वो भी बता रहे हैं बहुत कष्ट होता है ना एक बिच्छू के काटने का है। हा तो अगर 40,000 बिच्छू एकदम काटें तो क्या हाल होगा, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय, इतना कष्टकारक है। तो ये भूल गए हम एक्चुअली, बाकी चीजें जो है ना, जन्म बीमारी बुढ़ापा और मृत्यु, चार है ना, ये चार दोष है ना, चार चीजें हैं जो असल में कष्ट दे रही है हमें और जिनसे हमें ऊपर उठना है, वो है जन्म बीमारी बुढ़ापा और मृत्यु। बीमारी का भी हमें अनुभव है, बीमारी आई और चली गई, ठीक है ना, अनुभव है हमें। बुढ़ापे का भी अनुभव है, बुढ़ापा भी आता है, कष्ट लेके आता है, रहता है, लेकिन अनुभव होता है ना हमें। लेकिन मृत्यु का जो अनुभव है वो तो भूल गए हैं, वो तो बहुत पुराना है, उसका अनुभव हमें याद नहीं है, मृत्यु का अनुभव। उसी कारण से कई लोग तरह तरह की अपनी फिलॉसफीज भी देते हैं, कहते हैं कि भैया जब जियो तो खाओ पियो, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, वो हुए हैं चैवक, चैवक मुनि हुए हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं डाका डालो चोरी करो घी पियो, मतलब कहने का मतलब है एंजॉय करो, चाहे चोरी करके चाहे डाका डाल के, क्योंकि जैसे ही शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, कई लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। इसीलिए भगवान ये हमें तर्क दे के समझा रहे हैं कि जैसे देखो शरीर बदल रहे हो तुम, मृत्यु को तो प्राप्त हो रहे हो, मृत्यु तो आपके सामने है, जब शरीर बदलता है तो पुराना शरीर मर गया नया शरीर आ गया, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मृत्यु के लिए तैयारी करें। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं तैयारी करनी है कृष्ण भावना भावित होना, ये है असली तैयारी। योगियों की जो तैयारी है ये तो बहुत मुश्किल है और आज के जमाने में तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। जैसे बताया है योगियों का जैसे कैसे करना चाहिए, छठे अध्याय में पूरा बताया है, वो संभव नहीं है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करना है, ये बहुत आसान है, सरल है। और इसमें अगर हम लग जाए तो ये हो सकता है कि हम भगवान के धाम चले जाए, क्योंकि इसके लिए जरूरी नहीं है। हालांकि भगवान ये कह चुके हैं कि आपको आखिरी मोमेंट में, आखिरी क्षण जैसा आप ध्यान करोगे वैसा ही आप प्राप्त करोगे, वैसा ही धाम प्राप्त करोगे। लेकिन जब हम कृष्ण को समर्पण कर देते हैं, कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, है, उनके प्रति हम पूर्ण सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो फिर कृष्ण जो है सारी व्यवस्था करते हैं, सब व्यवस्था संभालते हैं। फिर तो सबसे बड़ी हमारी बीमारी क्या है, यही बीमारी है कि हम समर्पण नहीं करते, ये बीमारी है। इसी कारण से हमें इस संसार में डाला गया है, यही बीमारी लेके पैदा हुए हम। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया झापटिया धरे। जैसे ही हम भोग की वांछा करते हैं, भगवान को भूल के भगवान से अलग रहने रह के हम भोग भोगना चाहते हैं, वैसे ही माया हमें पकड़ लेती है और इस संसार में डाल दिया जाता है और हमारा सारे दुखों का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। क्योंकि हम सब जो है हमारी कि हम सरेंडर नहीं करना चाहते, समर्पण नहीं करना चाहते। इसलिए भगवद गीता में भगवान आखिर में कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू डर मत। तो ये जब हम करते हैं तो फिर हमें भय नहीं लगता, फिर हमें मृत्यु से भय नहीं लगता। नहीं तो मृत्यु तो सबसे बड़ा डर है, क्योंकि भगवान जो है, भगवान श्याम सुंदर भी है, बहुत सुंदर, अति सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम है, लाखों लाखों काम देवों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इतने सुंदर हैं भगवान। कामदेव सबसे सुंदर है, सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन भगवान जो है कामदेव को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन, मदन का मतलब कामदेव। लेकिन भगवान का एक दूसरा रूप भी है। कौन सा दूसरा रूप? मृत्यु के रूप में आते हैं। जब भगवान कहते हैं ना मैं मृत्यु हूं, सबका हरण करने वाला मैं मृत्यु भी हूं, ये भी उनका रूप है। जब हम श्याम सुंदर को समर्पण नहीं होते, श्याम सुंदर को हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते, तो फिर मृत्यु को समर्पण करना पड़ता है हमें। तो जो बुद्धिमान है वो भगवान के इस रूप को समर्पित करता है, ना कि मृत्यु, जो भगवान का मृत्यु रूप है, सबसे डरावना रूप भगवान का वही है। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे बिल्ली चूहे के लिए बहुत डरावनी है, जब वो बिल्ली चूहे को अपने मुंह में रखती है तो उसको मौत नजर आती है, लेकिन वही बिल्ली जब अपने मुंह से अपने बच्चों को उठाती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो बच्चे कोई डरते थोड़ा है, बच्चे जो है वो तो मस्त है, वो तो मस्ती से झूले ले रहे हैं। इसी तरह से जो मृत्यु का ये रूप है जो इतना डरावना है, इन भक्तों के लिए, भक्त नहीं डरते उस डरावने रूप से बिल्कुल। तो इसीलिए हमें भगवान को, इस श्याम सुंदर भगवान को समर्पित होना है। और समर्पण का क्या मतलब है, क्या मतलब है समर्पण का? जो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्या मतलब, भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है, क्या करें। यहां पे बताया है, अगर आप ये तात्पर्य पढ़ोगे ये श्लोक का 18वें अध्याय में, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि इस शरणागति का मतलब क्या है। कौन सा श्लोक है ये सर्वधर्मान प्रत्यज्य है, 66 है ना, 66वें श्लोक में भगवान तात्पर्य में कह रहे हैं हरि भक्ति विलास से, हरि भक्ति विलास से शरणागति की, कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है हरि भक्ति विलास में। क्या है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षहितिति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये है शरणागति, षड्विधा, छह तरीके से शरणागति होती है। अनुकूलस्य संकल्पा, अनुकूल से संकल्प का मतलब क्या है कि जिस कर्म से कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उसे उससे बचना चाहिए, यह है प्रतिकूलस्य वर्जनम, ठीक है ना। अनुकूलस्य संकल्प, जिससे आपकी बढ़ोतरी होती है कृष्ण भावना अमृत में, उसको आप स्वीकार करो, उस स्थिति को, उन चीजों को, उन लोगों को, उस समाज को आप स्वीकार करो जो आपकी कृष्ण के प्रति समर्पण में, कृष्ण के प्रति भक्ति में, कृष्ण के प्रति आपके लगाव में बढ़ोतरी करता है, उसको आप स्वीकार करो। संकल्प का मतलब अनुकूल से, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो संकल्प, और प्रतिकूल से वर्जनम, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। यह है शरणागति, जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। फिर कह रहे हैं रक्षशितिति विश्वासो, पक्का विश्वास कि भगवान हर हालात में मेरी रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास, ये तीसरा है, पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर हालात में मेरी रक्षा करेंगे, डरना नहीं चाहिए कि अभी तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी मुझे किसी और की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान नहीं कर सकते इसमें, भगवान मेरी रक्षा नहीं कर सकते, किसी और की शरण लेनी पड़ेगी, किसी और देवी देवता की या और किसी चीज की नहीं, पक्का विश्वास कि भगवान हर हालात में मेरी रक्षा करेंगे। जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी गुजरी है ना, प्रहलाद महाराज के चरित्र में हम देखते हैं पूरा विश्वास कि हर हालात में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये समर्पण है। लेकिन हम लोग समर्पित ना होने का हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, ओ क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, बुढ़ापे में कैसे कौन देखभाल करेगा, बुढ़ापे में मेरी, तरह तरह से हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। जब हम शरणागत नहीं होते, शरणागत जो होता है वो हमेशा, उसको विश्वास है पक्का, यही है शरणागति, हर हालात में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा कर सकते हैं, वो पूरे सक्षम है हर हालात में। प्रहलाद महाराज के चरित्र में देखो भगवान ने रक्षा की कि नहीं, क्या क्या कष्ट नहीं दिए, हिरण्यकशिपु ने क्या क्या कष्ट नहीं दिए उनको, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की हर हालात में, क्योंकि वो पूर्ण रूप से शरणागत थे। जब हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होते तो भगवान रक्षा कैसे करेंगे। आप लोग जा क्यों रहे हो, क्या हो गया है, तो टाइम लग जाएगा, और रास्ते में अगर जाम लग गया तो क्या करोगे, उड़ के पहुंचोगे। अभी शरणागति की बात हो रही है वो समझ ही नहीं आई इसका, बैठो 10-15 मिनट है नहीं और हम हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, यही तो सोचते हैं कि हमारा माइंड कैसा है, मन हमारा कितना बड़ा शत्रु है, कितना बड़ा शत्रु है। देखो जब कोई थोड़ी सी बात आ रही है काम की तो मन कहता है लेट हो जाओगे, और वहां जाम लगा हुआ है, उड़ के पहुंचोगे फिर क्या करोगे, हम कंट्रोलर तो है नहीं। यही तो है, यही तो माया है, और माया क्या है, यही तो माया है। और क्या है माया, यही तो है माया। 10 मिनट 15 मिनट में पूरी क्लास खत्म हो के आप पूरे का पूरा तत्व समझ के जा सकते हो, प्रसाद भी मिल सकता है, प्रसाद भी लेके जा सकते हो। भगवान को हम समझते नहीं है, ये हमारी मुसीबत है, सबसे बड़ी ये मुसीबत है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान ही हमारे असली दोस्त हैं, कोई दोस्त नहीं है हमारा। और भगवान कुछ भी कर सकते हैं किसी के लिए, भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकते हैं। बताओ, भगवान है, ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्या, वो अकेले हैं, वही सब कुछ, सबसे बड़े हैं। वो क्या करते हैं, अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, बेइज्जती हो जाए उनको इसकी परवाह नहीं है, कुछ भी करने को तैयार है अपने भक्त के लिए, और हम उनकी भक्ति नहीं बनते। इतने सारे शास्त्र, इतने सारे लोग हमें बता रहे हैं, यही तो हम बता रहे हैं। प्रहलाद महाराज को देखो, क्या कुछ नहीं किया, वो खंभे से निकल आए, तो खंभे से कोई पैदा होता है, देखा आपने कभी आज तक खंभे से पैदा होते हुए? तो आज भी पैदा हो सकते हैं आप, प्रहलाद बनो ना फिर, भगवान आपके लिए खंभे से निकल आएंगे, क्या कहीं से भी निकल आ सकते हैं, जहां से आप कहोगे, क्योंकि भगवान तो हर जगह विराजमान है। यही तो अंतर है, जो भगवान का भक्त है उसको भगवान कण कण में नजर आ रहे हैं, और जो भगवान का भक्त नहीं है वो कहता है भगवान कहां है, कहां है भगवान, कहां है भगवान, नजर ही नहीं आते, कहां है कहां है, उसको भगवान नजर ही नहीं आते। भगवान तो कण कण में है, कहां नहीं है भगवान। और फिर बाद में कह रहे हैं गोप तृत्वे वर्णम तथा, भगवान हमारा भक्षण करेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे, पूर्ण रूप से वो है, समर्थ है, इसमें समर्थ है उनमें, है ना। हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि कैसे होगा क्या होगा, अब हमारा समय तो चला गया भक्ति में, अब कैसे करेंगे, नहीं, भगवान भरण पोषण करेंगे। एक श्लोक है 9वें अध्याय में, आगे आएगा, अनन्यश चिंत्यंतो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्य युक्तानां योगक्षेम वहामहम। क्या मतलब है कि जो मेरा भक्त है, अनन्य भक्त है, उसकी जो जरूरतें हैं उनका वहन मैं खुद करता हूं, योगक्षेम वहामहम, हम वहाम करता हूं मतलब वहन करता हूं खुद मैं। तो एक ब्राह्मण थे यमुनाचार्य, उन्होंने जब इसको पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भगवान तो ब्रह्मांडों के मालिक हैं, राजाओं के राजा हैं, सम्राटों के सम्राट हैं, वो तो वो खुद थोड़ा कर सकते हैं, वो खुद थोड़ा ये काम करेंगे। बड़ा आदमी जो है वो, जैसे कोई बड़ा आदमी है जब घर में उसकी शादी होती है तो सबके घर में खुद थोड़ा कार्ड देने जाता है वो, खास खास जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास जाता है, बाकी तो उसके नौकर चाकर देने जाते हैं, नहीं, सच बात है नहीं। मान लो दिवाली आती है जैसे, तो दिवाली जब आई तो सबके घर में खुद थोड़ा जाता है वो दिवाली देने के लिए, भेंट देने के लिए, उसके नौकर चाकर हैं देते हैं। बड़े आदमियों के काम आधे से ज्यादा तो नौकर चाकर ही करते हैं ना, नहीं, यही तो है बड़े होने का, ये तो सिंबल है, नहीं। आप किससे पूछो, हाँ भाई फैक्ट्री है, अच्छा जी आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, तो उससे पता लग जाता है कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितना बड़ा आदमी है। समझ आ रही है बात, नहीं आ रही, समझ रहे हैं ना। जो बड़ा आदमी है वो तो करवाता है, खुद थोड़ा करता है काम, इतना बड़ा आदमी। तो इसलिए वो ब्राह्मण ने सोचा कि यहां पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, भगवान कह रहे हैं कि मैं योगक्षेम वामी हम नहीं, यहां होना चाहिए क्रोमी हम, करवाता हूं मैं अपने भक्त के लिए करवाता हूं। ये उसने काट के लिख दिया, ये काट के लिख दिया और चला गया वो जमुना में स्नान करने। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने देखा कि एक काला और एक गोरा दो लड़के आए हैं, और उन्होंने वहंगी होती है ना यहां पे, अगर अभी तो पता नहीं, आपको पता नहीं है, श्रवण कुमार उसी में लेके गए थे अपने मां बाप को, वो पहले भी आते थे बेचने के लिए ना, एक आगे झोला होता था, एक पीछे बीच में डंडा होता था, आजकल तो रिवाज नहीं रहा है ना। तो उसमें भगवान ओ जो लड़के हैं वो सारे का सारा घर का सामान लेके आ रहे हैं, सारी चीजें जरूरत की घर के ले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि रखो आपके ब्राह्मण देव ने भेजा है ये सामान आपके लिए। तो बड़ी हैरान हो जाती है, अच्छा इतना सामान भेजा है, अच्छा। तो कहते हैं जी जल्दी जल्दी ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, नहीं तो हमारी पिटाई करेंगे वो ब्राह्मण देव जी। और ये देखो हमारी पीठ पे कैसे उन्होंने मारा है, पीठ दिखाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे निशान लगे होते हैं। वो बड़ी हैरान होती है कि मेरे पति इतने क्रूर हैं, क्रूर हैं, इतने इतने सुंदर सुंदर बच्चों को मारा है। वो रख के और वो चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब आते हैं वो, तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये कौन सामान लेके आया है, इतना सारा सामान कौन लेके आया है। तो कहते हैं आपने तो भिजवाया है, वो लड़के कह रहे थे आप उनको आपने मारा भी है कि जल्दी जल्दी जाओ, वो हमारी पीठ दिखा रहे थे। तो सब समझ आ जाता है उनको, सब बात समझ आ जाती है कि भगवान ये करके दिखा रहे हैं कि मैं करता हूं, करवाता नहीं हूं, मैं खुद करता हूं। ये है भगवान, उस भगवान को छोड़ के हम चक्रों में पड़े हुए हैं, वो है हमारे, वही तो काम आने वाले हैं। और कौन काम और क्या कर भी क्या सकते हैं आपका, हमें सोचना चाहिए। वैसे हम सोचते नहीं है बस, और भगवान के बारे में जानते नहीं है इसलिए समर्पण नहीं करते, नहीं तो भगवान के अलावा तो कोई और समर्पण के योग्य ही नहीं है। मान लो आपने किसी से दोस्ती की है, आपका कोई जानकार है, रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, आपका कोई संबंध है, अब आप दुखी हुए, आप उसके पास गए कि ऐसा है दोस्त देखो बहुत घाटा हो गया है, अभी ऐसा है सिर्फ मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, आप 10 लाख मुझे दे दो तो मेरा काम बन जाएगा, मैं लौटा दूंगा तुम्हें। वो बंदा तो बड़ा पक्का दोस्त है उसका, देना भी चाहता है उसको, लेकिन कहता है भैया क्या करूं मैं तो, तू जान ले ले, मेरे पास तो 10 लाख है नहीं, 10 हजार भी नहीं है मेरे बैंक में, जान ले ले मेरी, जान देने को तैयार हूं। वो कहेगा भैया जान क्या करनी है तेरी, मुझे तो 10 लाख रुपए की जरूरत है। चाहते हुए भी नहीं कर पाया ना आपकी, चाहते हुए भी आपकी वो सेवा नहीं कर पाया, आपका वो जो संबंध था वो फेल हो गया। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है, भगवान से जब आप मांगोगे भगवान कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी। संदीपनी मुनि थे, उनके गुरु, उन्होंने जब कहा जब शिक्षा खत्म होगी, गुरु महाराज क्या दक्षिणा दूं, गुरु महाराज ने कहा दक्षिणा ही देना चाहते हो, अपनी पत्नी के पास गए पूछा, ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं कृष्ण बलराम कि क्या दक्षिणा दें। तो पत्नी कहती है ऐसा है मेरा जो पुत्र मर गया था समुद्र में डूब के, उनको को लेके आए, वो वापस ले आए उनको। ला सकते हो आप, आपका रिश्तेदार ला सकता है, आपका दोस्त राष्ट्रपति ला सकता है, भगवान ले आए उसको। भगवान गए, वो समुद्र में गए, समुद्र देवता को कहा उनका संदीपनी मुनि का जो बेटा है वापस लौटाओ। समुद्र ने कहा हम भगवान मेरे पास नहीं है, वो तो कहां गया, वो तो चला गया यमराजपुरी में, वहीं यमराज के पास है। भगवान वहां पहुंच गए अपना रथ लेके और यमराज को कहा उसका पुत्र लौटाओ। एक सेकंड में ले आया वो, एक सेकंड नहीं लगाया और भगवान ने लाके दे दिया। ये है भगवान, कुछ भी कर सकते हैं। उनको हम छोड़ के और पता नहीं क्या पचड़ों में पड़े हुए हैं, ये मेरा करेगा, ये मेरा क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपका क्या कर सकता है वो। ये है शरणागति। शरणागति इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम जानते नहीं है उनके बारे में, पढ़ते नहीं है उनके बारे में, सुनते नहीं है उनके बारे में, इसलिए शरणागति नहीं होती। नहीं तो भगवान के अलावा और कौन है शरणागति के लिए। तो यही कहा है कि गोप तृत्वे वर्णम तथा, वो हर हालात में हमारा भरण पोषण करेंगे। और फिर आत्मनिक्षेप कारपण्य षडविधा शरणागति, आत्मनिक्षेप और कारपण्य। आत्मनिक्षेप मतलब सब कुछ उनको हमें निछावर कर देना है, सब कुछ दे देना है। और हमें क्या अपने को, अपने बारे में क्या सोचना है, कारपण्य, अपने को हमेशा हमें मीक एंड हम्बल रहना है, मीक एंड हम्बल, नम्रता का व्यवहार करना है हमें, है ना। जैसे यहां कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे अपने आप को निसहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है। फिर प्रकृति नहीं कुछ कर पाती जो भगवान के शरणागत है। ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है शरणागत होना, भगवान को शरणागत होना, भगवान मैं तेरी शरण में हूं। माया जो है आपको लपेटती है, दूसरी तरफ ले जाती है माया, आप शरणागति होके तो देखो, आप समर्पण कभी करके तो देखो, देखो कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अब देखो समाज में क्या है, समाज में जो लोग समर्पित नहीं है, आप देखो आप भक्त तो सब समर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं, हो रहे हैं कुछ समर्पित। जो लोग सबसे जो शुरुआत है समर्पण की, वो है भगवान के नामों का जप करना। ये शुरुआत है, जो भगवान के नामों का जप करना शुरू करते हैं, एक माला दो माला जो शुरू कर दी, तीन माला आपने शुरुआत कर दी, आप देखो तो जप भी करना सिर्फ शुरू किया है, कैसे भगवान जो है आपके जीवन में आते हैं। भगवान जो है नास्तिकों के जीवन में कुछ इंटरफेयर नहीं करते, कुछ भी, वो तो प्रकृति है, भोग करेंगे भोगेंगे, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। नास्तिकों के जीवन में वो कुछ नहीं इंटरफेयर करते, वो कुछ भी करते रहे, प्रकृति जैसे करेंगे वो भोगेंगे। लेकिन जो भक्त हैं उनके उनके जीवन में वो इंटरफेयर करते हैं, उनके जीवन में आके हस्तक्षेप करते हैं, उनके 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 जो जीवन का जो रथ है अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे अर्जुन का रथ ले लिया ना अपने हाथ में, ऐसे आपके जीवन का रथ अपने हाथ में ले लेते हैं और आपको सब चीजों से बचाते हुए अपने धाम ले जाते हैं, भगवान अपने धाम ले जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होना जो है उसमें फिर ये इन चक्रों में नहीं पड़ना कि ये समय हो ऐसे हो ये करें वो करें, कितनी मुसीबत है उसमें। जहां पे भी जिस जगह पे भी जिस हालात में भी आप शरीर छोड़ोगे, और अगर आपके मुंह से मान लो ऑल ऑफ ए सडन एक्सीडेंट हो जाता है, अब एक्सीडेंट में तो कोई समय नहीं मिला आपको कुछ बोलने का, तो इसका मतलब कि भगवान आपको अपने धाम में नहीं लेंगे। लेंगे क्यों नहीं लेंगे, 100% लेंगे, अगर आपने पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा में लगाया है। क्योंकि भगवान, हम अपने मन से थोड़ा पकड़ सकते हैं भगवान को, लेकिन भगवान चाहे तो कभी भी हमारे मन में आ सकते हैं। भगवान को थोड़ा रोक सकते हो आप कहीं जाने से। तो भगवान चाहे जब हम मृत्युशैया पे पड़े हैं हमारा, इसीलिए प्रभुपाद जी इसलिए भी जो ये वाला भजन है मुकुंद माला स्रोत से, जो किंग कुल शिखर की प्रार्थनाएं हैं उसमें से एक भजन है, वर्ष है वो भजन के रूप में प्रभुपाद जी बहुत गाया करते थे। कौन सा भजन, कौन सा है वो, किसको याद है? वेरी गुड वेरी गुड, तालियां मारो ना, माता जी ने कितना बढ़िया देखो पकड़ ली, बात को पकड़ लिया है ना। किंग कुलशेखर यही कह रहे हैं कि कृष्ण त्वदीया पंकज पंजरांतम है, कि आपके चरणों में मेरा मन जो है वैसे ही एंटेंगल हो जाए जैसे राजहंस, राजहंस जो है लोटस स्टेम में एंटेंगल हो जाता है, लोटस के साथ खेलता है, उसकी लंबी गर्दन होती है तो फंस जाता है उसमें, ऐसे ही मेरा भी मन जो है आपके चरणों में फंस जाए। क्योंकि प्राण परायण समय कफवात पित्ता, प्राण परायण, जब प्राण का परायण का समय आएगा तो ये कफवात पित्ता जो है कंठा अवरोधन स्मरणम कुतः, कंठ का अवरोध हो जाएगा, कैसे मैं कैसे बोल पाऊंगा, कैसे नाम ले पाऊंगा आपका, उस समय मेरा कैसे निकलेगा मेरा नाम, हरे कृष्णा कैसे निकलेगा, यहां तो कंठ में आपका खुद का भी अनुभव होगा। जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या मन करता है जप करने का, बीमार हो गए शरीर में ताकत नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है या दांत में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, तो ध्यान सारा वहीं तो नहीं चला जाता, पहले वो करते हैं कि किस तरह से ठीक हो फिर जप करें, जप कर पाते हैं उसमें नहीं कर पाते ना, अपना अनुभव है ये, सोचते हैं चलो ठीक हो जाएगा शाम को करेंगे, एक बार सोचा था कल कर लेंगे पूरा, नहीं नहीं होता, सच बात है या नहीं। तो इसीलिए किंग कुलशेखर, उनका भी ये अनुभव है ना, इसीलिए किंग कुलशेखर कह रहे हैं कि ऐसा हो कि भगवान अभी ले लो मेरे प्राण, क्योंकि अभी तो आपके मैं स्वस्थ हूं, अभी तो आपका नाम जप रहा हूं, है ये उनकी भावना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर कंठ अवरोधन हो जाएगा, आप मान लो कोमा में चले गए, कुछ भी स्थिति में चले गए और भगवान आपके मन में नहीं आ सकते, भगवान आ जाएंगे। भगवान थोड़ा कोई कृत घन थोड़ा है, भगवान तो थोड़ी सी सेवा का कुछ भी पुरस्कार दे सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में कहा ना, सुलपमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ी सी भी किसी ने भक्ति की है बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाएगी। सच बात है ये। अजामिल ने क्या किया था, अजामिल ने थोड़ी सी भक्ति तो की थी, वो कितने पाप किए उसने, कितने पाप किए पूछो ही मत, क्या नहीं किया उसने, कौन सा पाप नहीं किया। जब यमराज के चित्रगुप्त ने उनकी वो देखी तो वो खत्म ही नहीं हो रही थी, वो पन्ने खत्म ही नहीं हो रहे थे पापों के। भगवान ने क्या, भगवान ने तो अपने धाम में भेजा उसको, सोलह पमस से थोड़ा सा उसने किया था, इसलिए ऐसी इंस्पिरेशन हुई कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया और नारायण 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 लास्ट में उसके मुंह से निकला क्या से भगवान ने योजना बनाई। फिर हरिद्वार गए जब दोबारा उनको आत्मा वापस आई और आखिर में वैकुंठ लोक से वो विमान आया और उसमें बैठ के भगवान के धाम गए। तो ये बहुत स्ट्रांग है। तो यहीं हम विराम देते हैं क्योंकि 9 बजने वाले हैं। लेकिन अगर किसी का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, तो पूछिए। किसी का कोई संशय है या कोई टिप्पणी है कुछ कुछ क्लास के बारे में? हाँ पूछो प्रभु जी। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न, वेरी गुड। तो ये जो डंक लगने का है, क्यों इतना कष्ट होता है, वो हमें समझना चाहिए। पहले इतना कष्ट क्यों डिस्क्राइब किया है? आप इस तरह से सोचो, अभी जब हम जिंदा हैं, आत्मा हमारे शरीर में है, लेकिन हमारी कोई चीज जो हमारे से बहुत प्यारी है वो छूट जाती है। मान लो हमारा बेटा है, बेटा, प्यारा बेटा हमारा 20 साल का, एक्सीडेंट में चला गया। कैसा कष्ट होता है, कैसा कष्ट होगा सोचो, कितने बिच्छुओं का कष्ट होगा सोचो जरा है? या और कोई मकान था, बहुत बड़ा मकान था, किसी कारण से घाटा हो गया और मकान गया रातों रात, मतलब राजा से रंक बन गए, कैसे कष्ट होगा? समझ में आ रही है? कुछ लॉस होता है, जब बड़ा लॉस होता है कैसा कष्ट होता है, टंक मारते हैं ना बिच्छू, तो उस वक्त तो एक ही पल में सब कुछ चला गया आपके हाथ से, सब कुछ, कुछ नहीं है अब आपका, सब कुछ चला गया, तो होगा नहीं कष्ट। लेकिन जो इसके विपरीत जो भक्त है, उसने तो पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है, उसने तो सब कुछ छोड़ दिया है पहले ही, तो उसको कहां से कष्ट होगा, उसको कुछ नहीं कष्ट होगा। प्रभुपाद जी बताते हैं भक्त के लिए मृत्यु ऐसी है कि जैसे कोई आप रात को सोते हो और सुबह जागते हो, तो यहां उसकी आंखें बंद होती हैं और भगवान के धाम में या कहीं भी जहां भी भगवान ने भेजा वहां उसकी आंखें खुलती हैं, बस ऐसा होता है उसके लिए। तो उसके लिए नहीं, उसको बिच्छू नहीं काटते, समझ रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि बिच्छू काटने का कष्ट इसीलिए बताया कि हम इतने ज्यादा एनग्रोस्ड है ना इस संसार में, और थोड़ा सा कुछ हमारा लॉस होता है तो हमारी जान निकलती है ना। तो जब भगवान को हम समर्पित हो गए, भगवान के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, यहां से हम अटैच ही नहीं है, तो कष्ट क्या होगा फिर? ठीक है। और किसी का प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न था इनका, क्लियर किया इन्होंने बहुत बात को। और किसी का प्रश्न? ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय।